पृष्ठ संख्या 73, शीर्षक है धार्मिक भावना का विकास और अचेतन, फ्रायर तथा युंग के द्वारा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से धर्म की उत्पत्ति और विकास पर विचार करने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान की अचेतन की धारणा को भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा। फ्रायड एवं युंग ने मानव मन की व्याख्या अचेतन के आधार पर की है। धर्म एक मानव व्यवहार है, इसका उद्भव मानव चेतना में कैसे हुआ, इसके लिए इन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अचेतन को महत्व प्रदान किया है। इस विषय में कुछ धर्म दार्शनिकों ने इनकी अवहेलना की है और बताया है कि धर्म मानव चेतना की वस्तु है और धर्म के उच्च तथा मूल्यवान तत्व चेतन में ही प्राप्त होते हैं, अचेतन में ये तत्व नहीं पाए जा सकते। डी एम एडवर्ड ने इसी अभिप्राय से अचेतनवादी धर्म की धारणा को महत्व नहीं दिया है, परंतु अचेतन की समस्या को उन्होंने धर्म की प्रामाणिकता के लिए आवश्यक माना है। यदि अचेतन से धर्म की उत्पत्ति मानी ही नहीं जा सकती तो प्रामाणिकता का उस आधार पर प्रश्न ही कैसे उत्पन्न हो सकता है। अतः हमारी दृष्टि से धार्मिक चेतना के उद्भव में अचेतन के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए और इसका विवेचन होना आवश्यक है कि अचेतन किस प्रकार धार्मिक चेतना को मानव चेतना में उत्पन्न करता है। अचेतनवादी धारणा कहाँ तक ठीक मानी जा सकती है? अचेतन का अर्थ चेतनहीनता नहीं है। हमारी बहुत सी प्रतिक्षेपात्मक क्रियाएं जैसे रुधिर संचालन, पाचन आदि होती है, परंतु उनकी चेतना हमें नहीं होती, परंतु इन क्रियाओं का एक लक्ष्य होता है। पृष्ठ संख्या 74। अचेतन का स्वरूप चेतन के समान ही है और चेतन की तरह लक्षात्मक भी होता है। चेतन और अचेतन में भेद केवल इतना है कि अचेतन का ज्ञान व्यक्ति को अपनी इच्छा से अंतर्दर्शन के द्वारा नहीं हो सकता। फ्रायड और युंग ने मानव मन में अचेतन की कल्पना की है। फ्रायड ने इस अचेतन को मनोविश्लेषण की विधि से जानने का प्रयत्न किया है। अगला शीर्षक है फ्रायड की अचेतन की धारणा और धर्म। फ्रायड मूल रूप में चिकित्सक थे और मानसिक रोगों के इलाज के संदर्भ में उन्होंने अचेतन की खोज की। उनके अनुसार मानव मन की प्रक्रियाओं का क्षेत्र 3 प्रकार का होता है, चेतन, पूर्वचेतन और अचेतन। फ्रायड ने अचेतन की तुलना बर्फ के उस पहाड़ से की है जिसका एक भाग पानी के ऊपरी सतह पर होता है और शेष अतल गहराई में छिपा रहता है। हमारे मन का अचेतन स्तर बर्फ के उसी हिस्से के समान है जो पानी की अतल गहराई में छिपा हुआ है। यह मन का बहुत बड़ा भाग है जो छिपे हुए में हमारे चेतन व्यवहार को प्रभावित एवं संचालित करता रहता है। अतः चेतन क्रियाओं को जानने के लिए अचेतन मन की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रायड के अनुसार इस अचेतन मन में हमारी वे अनुभूतियाँ जो चेतन जगत में संतुष्ट नहीं हो पाती, दमित कर दी जाती हैं। ऐसी अनुभूतियाँ दुखदायक होती हैं। इनके अतिरिक्त इसमें ऐसी मूल प्रवृत्ति जन्य वासनाएं भी होती हैं जिनके चेतन स्तर पर आने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इनमें यौन संबंधी प्रवृत्तियों का आधिक्य रहता है। संक्षेप में अचेतन मूल प्रवृत्तियों, काम वासनाओं, अतृप्त इच्छाओं एवं दमित अनुभूतियों का भंडार है। इसी को फ्रायड ईड भी कहते हैं। ईड में स्थित काम वासना ही जीवन की मूल प्रेरक शक्ति कही जाती है। इसी को फ्रायड लिबिडो की संज्ञा देते हैं। लिबिडो का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है। केवल काम वासना ही इसका मूल रूप नहीं है। मानव की सर्जना शक्ति इसी पर निर्भर है। यह सुखोन्मुख होता है, परंतु मनुष्य में दूसरी ओर घृणा और विनाश की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रवृत्ति को फ्रायड ने मृत्यु की मूल प्रवृत्ति कहा है। लिबिडो की सार्वभौम शक्ति को तो उन्होंने पहले ही माना था, बाद में मृत्यु प्रवृत्ति को भी स्थान दिया। मानव जीवन को परिचालित करने वाली यही दोनों प्रेरक शक्ति के रूप में है। फ्रायड ने जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, संस्कृति, दैनिक जीवन की भूलों, स्वप्नों आदि की व्याख्या अचेतन तत्वों के आधार पर की है। धर्म के संबंध में मानव की जितनी चेतन क्रियाएं होती हैं, उनका आधार अचेतन ही है। ईश्वर में आस्था, पूजा, कर्मकांड आदि समस्त क्रियाओं का विश्लेषण फ्रायड अचेतनवादी मत के आधार पर ही करते हैं। उनके अनुसार धर्म एक सामूहिक भ्रम है, अथवा धर्म मानव की सार्वभौमिक क्रिया बाध्यता है। धर्म के द्वारा मानव अपने अचेतन की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति करता है। संक्षेप में हम फ्रायड के धर्म संबंधी मंतव्यों को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। अगला शीर्षक है, पहला, ईश्वर पिता का ही प्रतिरूप है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं का विभाजन करते हुए तीन स्तरों को बताया है, ओरल, अनाल तथा फैलिक। प्रारंभ की दो अवस्थाएं अविकसित मानी जा सकती हैं, परंतु फैलिक अवस्था में बच्चों में माता पिता के प्रति एक भावना का विकास होता है। बालक माता पिता के प्रति अनुराग की भावना प्रकट करता है। यह आकर्षण विषमलिंगीय होता है, अर्थात बालक माता के प्रति आकर्षित होता है और बालिका पिता के प्रति तथा साथ ही साथ बालक पिता के प्रति तथा बालिका माता के प्रति विकर्षण का अनुभव करती है। क्रमशः एक के मन में दूसरे के प्रति विद्रोही भावनाएं भी विकसित होती हैं। पृष्ठ संख्या 75। इस भावना के विकास का आधार फ्रायड ने पौराणिक कथा को माना है। इस कथा में वर्णित ओडिपस तथा इलेक्ट्रा नामक बालक तथा बालिका के नाम पर माता पिता के प्रति आकर्षित होने की भावना को क्रमशः ओडिपस ग्रंथि तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि नाम दिया है। इन ग्रंथियों का विश्लेषण स्वाभाविक प्रतीत होता है। बालक माता से अधिक प्यार करता है क्योंकि माता उसका पालन पोषण करती है। पिता से अधिक प्यार उसको माता से मिलता है। शासक के रूप में पिता माता और बालक दोनों पर शासन करता है। माता के बहुत से कामों में पिता हस्तक्षेप करता है। पिता बालक को अपना उत्तराधिकारी समझकर जिम्मेदार कामों के लिए उसे तैयार करता है और आवश्यकता पड़ने पर डांट फटकार भी करता है। इससे धीरे धीरे बालक के मन में पिता के प्रति घृणा की भावना का विकास होता है। उधर बालिका का अधिक समय माता के साथ व्यतीत होता है। घर का सभी कामकाज उसे माता के साथ करना पड़ता है और डांट फटकार भी खानी पड़ती है। इसके विपरीत पिता बालिका को प्यार करता है और घर में बिगड़े हुए कामों के लिए पिता से उसे डांट नहीं पड़ती। पिता को वह अपना रक्षक एवं सहायक समझती है। इसके अतिरिक्त फ्रायड एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण विषमलिंगीय होना भी मानते हैं। जो कुछ भी हो, अंत में बालक और बालिका दोनों ही पिता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। बालिका तो पिता को महत्व देती ही है। बालक भी विद्रोह की भावना रखते हुए भी देखता है कि घर में पिता ही उसकी जिम्मेदारी निभाता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका सहारा वही है। बालक और बालिका दोनों पिता की आज्ञा को ही प्रधानता देते हैं। उसकी आज्ञा उनके अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है। उसकी आज्ञा का पालन करना अपना परम कर्तव्य मानने लगते हैं। पिता या माता के प्रति किए गए विद्रोह के प्रति वे क्षमा याचना चाहते हैं, पाप का प्रायश्चित चाहते हैं और दंड से भयभीत होते हैं। फ्रायड कहते हैं कि यही भावनाएं अंत में परम पिता के प्रति प्रक्षेपण के रूप में प्रकट होती है। बालक देखता है कि अंततो गत्वा घर का पिता शासक और आश्रयदाता होते हुए भी परम शक्तिमान नहीं है। वह उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रकृति के प्रकोपों का सामना करने में वह अक्षम है। पिता सीमित होने के कारण बाढ़, भूकंप और मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी दशा में उसके मन में असुरक्षा, अशांति एवं भय की भावना पैदा होने लगती है। वह देखता है कि प्रकृति भी जड़ है, जिससे उसको प्रेम, सहानुभूति, सुरक्षा और शांति नहीं मिल सकती। अतः वह एक ऐसे परम पिता की उद्भावना करता है, जिसकी शरण में जाकर उसे शांति और सुरक्षा मिले। वह परम पिता पूर्ण व्यक्तित्व से युक्त होगा और उसमें करुणा, दया, क्षमा, प्रेम आदि गुण होंगे। वह सार्वभौम और सर्वशक्तिमान होगा। ऐसे ईश्वर की परिकल्पना करके वह चेतन एवं अचेतन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह अपने पिता के स्थान पर ईश्वर रूपी पिता प्रतिबिंब की कल्पना करके आश्वस्त होता है। अतः फ्रायड के अनुसार ईश्वर कुछ नहीं शैशवकालीन पिता का प्रतिरूप है। फ्रायड के अनुसार पिता की भावना का यह प्रक्षेपण ही धर्म का मूल है। यहीं से धर्म का विकास होता है। फ्रायड अपने मत की पुष्टि सामाजिक, ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों पर भी करते हैं। उनका कहना है कि पिता ही घर का स्वामी होता है और आदिम काल में समाज का एक मुखिया होता था जिसका लोग आदर करते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे, परंतु साथ ही साथ उसके प्रति लोगों में विद्रोह करने की भावना भी होती थी, जिससे उसकी हत्या भी कर दिया करते थे। इसलिए मन में अपराधी वृत्ति के कारण पश्चाताप एवं पाप की भावना से छुटकारा पाने के लिए मृत पिता या पिता के रूप में मान्य मुखिया की पूजा भी होने लगी। पृष्ठ संख्या 76। मृत पिता की पूजा के फलस्वरूप समाज में धर्म का विकास देखा जाता है। धार्मिक चेतना के विकास के फलस्वरूप ही अंत में परम पिता ईश्वर की उपासना होने लगती है। फ्रायड इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म चिंता को दूर करने का एक उपाय है। मानव चिंताजनक परिस्थितियों में घिर जाने के कारण ही मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघरों में जाकर पूजा, दान एवं दर्शन तथा प्रार्थना आदि क्रियाओं द्वारा अपनी चिंता से मुक्त होना चाहता है और अपराध वृत्ति के कारण ईश्वर के समक्ष क्षमा प्रार्थी होता है। मानव की यह परिकल्पना है कि ईश्वर समाज में शुभ और कल्याण की स्थापना करता है और भक्त जनों को कृपा करके संकट और पाप से मुक्त कर देगा।